قد قال الذين من قبلهم, اسی طرح की बातें इन लोगों ने भी की थी जो इनसे पहले थे. कौन लोग पहले थे? कारून ने की, जैसे मैंने आपको बताया. तो फिर क्या हुआ? फमा अग्ना अनहुम मा कानू यकसिबून, तो कोई काम नहीं आई उनको जो भी उन्होंने कमाई की थी. वो इल्म उनका कहाँ गया फिर? कहाँ काबिलियत की कारून की? हाँ, कहाँ गई वो जो बड़ी बातें वो कह रहा था कि ये तो मेरे इल्म से और मेरी काबिलियत से मुझे मिला है, वो कहाँ गई? वो सिर्फ बातें ही रह गई. फिर अपनी काबिलियत थी तो फिर बचा लेता अपने खजानों को. इसीलिए हमें यहां से पता चलता है, जब इंसान से कोई चीज जाती है तो पता चलता है कि अल्लाह ही देने वाला है और अल्लाह ही वापस ले सकता है. वो तो ऐसो मंतशा हुआ तो जिल्लू मंतशा हुआ, चाहे तो इज्जत दे दे, चाहे तो जलील कर, चाहे तो मुल्क दे दे, बादशाहत दे दे, चाहे तो बादशाहत वापस ले ले. बोलना तो आसान है, इसका यकीन मुश्किल है. क्योंकि जब हमें चीज मिलती है तो हमें लगता है मेरी काबिलियत थी, जब चीज जाती है तो फिर हम रोते हैं, अल्लाह तूने मुझसे क्यों छीन ली है, और फिर मायूस होके बैठ जाते हैं, फिर अल्लाह से गिले शिकवे करने लगते हैं. असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, बार बार देखे यही बात आ रही है, उनको पहुंची जो उन्होंने कमाई की, जो बुरे आमाल उन्होंने किए थे उनके आमाल की ही सजा उनको पहुंची. जो पहले गुजरे हैं उनको भी उनके आमाल के बुरे नतायज पहुंचे. आप देख लें कितनी कौमों के ऊपर जो भी अजाब आए उनके आमाल का ही तो नतीजा थे ना. हम पढ़ चुके हैं क्या क्या उन्होंने अमल किए और उनको जो सजाएं मिली वही उन्होंने देखी. किसी को भी अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं पकड़ा है कि कोई उनका कसूर था ही नहीं और उनको ऐसे ही पकड़ लिया गया. जो उन्होंने किया, वल्लदीना तलमु मिन हाउलाई सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसब, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन इन लोगों में से, यानी कौन? जो मुशरिकीन मक्का है इनमें जो काफिर हैं, ये जो जो कुरैश मक्का है इनमें जो काफिर हैं, इन्होंने जो जुल्म किया यानी शिर्क किया, सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू, अनकरीब पहुंचेंगी उनको सजाएं जो उन्होंने कमाई की है. वमा हुम बिमुअज्जिज़ीन, और ये हमें आजिज करने वाले नहीं है, ये भी देख लेंगे. यानी पिछली कौमों ने भी देखे अपने बुरे अमाल के नतायज, ये भी देख लेंगे. अगर ये कुफर से बाज ना आए तो इनके ऊपर भी सजा आएगी, यानी मुख्तलिफ अजाबों की सूरत में. और ये दुनिया में भी आ जाती होती है, और आखरत की तो है ही, आपको पता है वो तो दिन ही वो है कि जिसमें सबके साथ इंसाफ होगा. जजा उ सैयाती सैया तुम मिसलुहा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि बुराई का बदला उसकी मिसल ही है, उसकी मिसल बुराई ही है. ऐसे कभी नहीं होगा कि गुनाह इंसान करे और उसको सवाब मिलना शुरू हो जाए, कभी भी नहीं होगा. नाफरमानियां करे अल्लाह की और अल्लाह ताला का बड़ा मुकर्रब और पसंदीदा बंदा बन जाए, ऐसे कैसे बात है ना. हम सोचते हैं कि पता नहीं हम करते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे. वो मैंने जैसे आपको बताया कि चूंकि हमारे सामने नतीजा नहीं आ रहा होता ना, तो हमें लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता. चूंकि हमारे सामने कोई सजा नहीं आ रही होती फौरी तौर पे, तो हमें समझ नहीं आती कि ये मेरी बुराइयों की नतीजे, या हमें उसी वक्त अल्लाह माफ करे हम अंधे नहीं हो जाते, बहरे नहीं हो जाते, या हमारे साथ कुछ और ऐसा चीज नहीं हो जाती, तो हम समझते कुछ नहीं होना. देखिए अल्लाह ताला बताता है, वो आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा. वो उस बस स्टोर हो गई है, वो रिकॉर्ड हो गई है चीज. अब इट डिपेंड्स, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर उसकी सजा आनी ही आनी. अल्लाह इसके इंसान माफी मांग ले अल्लाह ताला से रो रो के, वो या तो इस दुनिया में आ जाएगी, नहीं तो फिर मौत के वक्त आ जाएगी. कब्र के अंदर आ सकते हैं, कब्र के अजाब की सूरत में. हशर के दिन आ सकता है, हशर की परेशानी और सख्तियों की सूरत में. पुल सिरात के ऊपर आ सकती है उसकी सजा. पता है ना आपको, पुल सिरात में भी सिला रहमी जिन्होंने नहीं की होगी, अमानत में खयानतें की होंगी, वहां पे आ जाएंगी ये चीजें, आंकड़े उनको पकड़ लेंगे और जहन्नुम में डाल देंगे. तो वो आनी जरूर है, कहीं ना कहीं आएगी. तो ये इग्नोर कर देना कि कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. होगा तो जरूर, होगा तो जरूर, मगर अब किस वक्त होगा ये फिर इंतजार करूं. दुनिया में हुआ तब भी नहीं सहा जा सकता हमसे, और आखरत के तो खैर अजाबों का तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए इंसान को गुनाहों से डरना चाहिए, बचना चाहिए, इसीलिए इंसानों को गुनाहों से भागना चाहिए दूर, इसीलिए गुनाहों पर दलेर नहीं होना चाहिए, इसलिए गुनाहों को इजी नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत कोई बातें सभी कर रहे हैं ना तो क्या हो गया, डोंट टेक इट सो इजी। क्या हो गया फिर हमसे नहीं बर्दाश्त होगा जो होगा फिर। अवलम यालमून अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा हो या कदर, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। क्या ये अल्लाह ताला की रजा की निशानी है कि वो किसी का कुशादा कर दे? बिल्कुल भी नहीं, वरना अम्बिया फकरो फाके में जिंदगी ना गुजारते। क्या ये अल्लाह ताला की रजा की निशानी है कि वो नाराजगी की निशानी है कि वो तंग कर दे किसी का रिस्क? नहीं, ये अंबिया की मिसाल इसमें आती है कि अंबिया को के लिए अल्लाह ताला ने रिस्क को तंग किया, लेकिन अल्लाह ताला की रजा की ना उसकी नाराजगी की ये कोई निशानी नहीं। जिनका अल्लाह ताला रिस्क कुशादा कर देता है उनसे अल्लाह राजी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, यानी ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसकी बेस पे हम सोचते हैं कि आओ इनके पास बहुत पैसा है, देखो पता नहीं अल्लाह ने इनको इतना दिया हुआ है, कितना अल्लाह इनसे खुश होगा जो इनको इतना दे दिया, और ये गरीब बेचारे इनको जरूर अल्लाह इनसे नाराज ही होगा जो इनको नहीं दिया। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसको भी दे सकता है, जिससे नाराज होता है उसको भी दे सकता है, और आपके सामने मिसालें हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बात कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो दी तो दुनिया में कभी भी नहीं किसी को मिली ना मिली थी, अल्लाह उनसे राजी था। फिरौन को अल्लाह ने ऐसा मुल्क दिया कि आगे कोई उसके चू नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला उससे नाराज था। तो यहाँ पे सारे ये रूल खत्म हो गया, जिसका चाहे, ये अल्लाह की तकसीम है। इसका मतलब है कि किसी से भी जेलस होना, किसी से भी सोचना भाई इनको क्यों इतना मिल गया, इनमें क्या कमाल है ऐसा, मुझे क्यों नहीं मिला, याद रखें ये उसका ना कमाल है ना आपकी कोई कमी है, ये अल्लाह ताला की तकसीम है, और अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये तकदीर है, अल्लाह ताला ने इतना ही हमारी तकदीर में लिखा, वो हमें मिल रहा है, तकदीर पे हमारा ईमान है। जब हम कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन, जब हम रदीतु बिल्लाहि रब्बन कहते हैं ना तो उसको सोचा भी तो करें, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, तो अब आप उसके इसका मतलब हर फैसले पे राजी होना चाहिए आपको, फिर इसमें क्यों नाराजगी है कि उसको क्यों मिल गया, उसके बच्चे के लायक क्यों निकल आए, उनकी किस्मतें इतनी अच्छी क्यों निकल आई, उनकी बच्चियों की अच्छी शादियां क्यों हो गई, हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ? नहीं, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, हम नहीं इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस कर सकते ना ऑब्जेक्शन कर सकते। तो रिस्क में सभी नेमते वैसे तो आ जाती हैं, रिस्क वो सारी नेमतों को रिस्क कहा गया जो अल्लाह ताला इनायत फरमाते किसी को, हम ज्यादातर पैसे को देखते हैं लेकिन हर नेमत रिस्क है, किसी के पास इल्म ज्यादा है, किसी को ओहदा कोई बड़ा मिल गया है, किसी को जिंदगी लंबी मिल गई, किसी के पास सेहत है, किसी के पास नहीं है, वो कहता है जी उसको क्यों मिली भी है, उसकी जिंदगी इतनी लंबी, फलां तो इतनी जल्दी छोड़ के चला गया, उसको तो अभी जाना ही नहीं चाहिए था, और ये देखो अभी तक बैठे हुए 100 साल के भी होके, तो ये क्या मेरी तकसीम या आपकी है? ये तो अल्लाह ताला की है, किसको जाना है और किसको नहीं जाना ये फैसला अल्लाह का है। अब बंदा अपने लिए रिस्क की कमी को बहुत बुरा समझता है, लेकिन बाज चीजें इंसान अपने लिए बुरी समझता है उसमें उसके लिए खैर होती है, इसलिए कि रिस्क की जो कमी है, तंगी है, वो हिसाब किताब को आसान कर देगी, और जितना रिस्क ज्यादा होगा हिसाब किताब उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि हिसाब तो देना है, उसके बगैर तो इब्ने आदम के कदम हिल ही नहीं सकते जब तक ये बता ना दे माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ पे किया। तो बाज चीजों को हम अपने लिए बुरा समझते हैं, कहते हैं आए वो लोगों के पास तो इतना है, उनको तो सोचना भी नहीं पड़ता कहाँ खर्च करें, और उनके पास जगह नहीं, और उनको तो ये भी नहीं पता उनके पास है कितना, देखो कितना यहाँ प्लॉट और वहाँ जायदादें और वहाँ अपार्टमेंट और वहाँ ये, और देखो हम पीछे रह गए, और हम ऐसे हो गए, और फिर इसके ऊपर दिल तंग भी होता है, और फिर अल्लाह ताला से भी कहीं कहीं नाराजगी के जज्बात आने लगते हैं। क्यों, ये तो खैर है। अल्लाह हु अकबर, और इंसान समझे तो ये तो खैर है, और उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अगर जब आखिरत ही नजरों से ओझल हो तो फिर खैर इसी में नजर आती कि यहाँ पे ही सब मिल जाए, वहां की थोड़ी हमें परवाह है, वहां आसानी से छूट जाए। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लक़ौमी युमिनून, बेशक इसमें निशानियां उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो, ईमान वालों के लिए। जिसका ईमान ही ना हो वो तो कहता जी हमने अपनी काबिलियत से कमाया, और इसके पास क्यों ज्यादा, इसके तो मिलना ही नहीं चाहिए, और उसके पास क्यों कम है, उसको तो मिलना चाहिए। जब ईमान ना हो तो फिर ऐसी बातें हैं, या जब ईमान ना हो तो फिर इंसान ये कहता है जी हाँ वो इतना काबिल था, देखो उसको मिला ना, और तुमने तो कोई मेहनत नहीं की, तुम तो निकम्मे, तुम ऐसे इसलिए नहीं तुम्हारे पास है। हालांकि वो ये नहीं जानते अल्लाह ताला है, कुशादा करता है जिसका चाहता है, और कम करता है जिसका, तंग करता है जिसका वो चाहता है। इसीलिए आप दुनिया में देखते हैं कई लोग डिग्रियां ले लेके फिरते रहते हैं, कुछ भी नहीं। अगर डिग्रियों से ही मिलना होता तो जितनी ज्यादा बड़ी डिग्रियां उतनी ही ज्यादा पैसा होना चाहिए किसी के पास। कई लोगों को आप देखते हैं अंगूठा छाप है, उन्होंने सिग्नेचर भी नहीं करने आते उनको, वो अंगूठा लगाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, लेकिन इतना माल है कि उनको रेल पेल है, को परवाह ही नहीं है। इससे नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है देता है। और उसके बाद वो आयत जो कुरान करीम की सबसे ज्यादा हौसला देने वाली आयत, उम्मीद अफजा आयत, इंसानियत के लिए बहुत ही तसल्ली और तशफी वाली आयत, हिम्मत दिलाने वाली आयत, हौसला बढ़ाने वाली आयत, इससे ज्यादा बढ़ के उम्मीद अफजा आयत कोई नहीं है कुरान में। ये इब्ने अब्बास का कौल है। कुल कह दीजिए, अब ये भी कुल कह के कहा गया, यानी ये ताकीदी बात है, आप कह देना, आप जाके बता देना इनको क्या, या इबादी। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट बंदों से खिताब करता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, ए बंदो भी नहीं, या इबाद, ए बंदो, ए मेरे बंदो। जैसे माँ कहे ना ए मेरे बच्चे, और पता ही है कि बच्चा है आपका ही है, लेकिन उसके अंदर कितनी मोहब्बत होती है। बाप कहे मेरे बेटे, उसमें कितनी मोहब्बत है, शफकत है। अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी, कौन से मेरे बंदे, सारे नहीं, अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम, उन बंदों से अल्लाह ताला का खिताब है खास तौर पे यहाँ पे, जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती कर दी, जुल्म कर दी। इसराफ का मतलब क्या, हद से बढ़ जाना। इंसान जब गुनाह करता है ना तो वो किसी और का नहीं नुकसान कर रहा होता, सिर्फ अपना ही कर रहा होता है, अपनी जान पे ज्यादती कर रहा होता है। इसीलिए आदम अलैहि सलाम ने फरमाया था ना, रब्बना जलमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जान पे जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी करके। अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बादशाह में थोड़ी कोई कमी आ जाती। जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया कि उन्होंने गुनाह कर दिए, गुनाह उनसे हो गए हैं। अब देखिए ना, इस सूरत के अंदर बहुत दफा शिर्क की भी सजाएं बताई गई, कुफर की सजाएं बताई गई, और बहुत सारी चीजों का बताया गया कि ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के सामने वो कुछ आ जाए जो कि वो उस एक्सपेक्ट भी ना करता हो, बहुत सारी। अब इंसान कहता है हाय, अगर किसी को रियलाइज हो जाता है कि ये मेरे अंदर कमियां, ये गलतियां, ये चीजें मेरे अंदर हैं, अब वो क्या करे, क्या रोने बैठ जाए, डिप्रेशन में चला जाए, मायूस हो जाए, क्या करे अब वो। अब हो गया जो हो गया, अब पशेमानी होती है, अब अपनी जिंदगी के ऊपर पशेमानी होती है कि वो जिंदगी जो गुजार दी गफलत के अंदर, वो जिंदगी जो जहालत में गुजार दी, वो जिंदगी जो बेइल्मी के साथ, वो जिंदगी जो सारी दुनिया के पीछे लुटा दी, कहाँ कहाँ अपना वक्त गंवा दिया, अब जिंदगी हाथों से निकली जा रही है, अब रियलाइज हो रहा है कि ये सही नहीं हुआ। तो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया, गलतियां हो गई हैं। ला तकनातु मिन रहमतिल्लाह, कुर्बान जाए उस रब के। वो फरमाता है तुम मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। अब मायूस होके ना बैठ जाना कि अब मेरा क्या होगा, अब क्या फायदा। दुनिया कहेगी जरूर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लो जी इनको अब याद आ गया, अब बड़ी हजन बन के बैठ गई, अब बड़ी देखो नहीं एक बीबी बन के बैठ गई, बड़ी पारसा बन के बैठ गई। हमें पता है ये क्या चीज थी, ये क्या थी, इसके क्या कारनामे हैं, हमें पता है क्या हुआ करती थी। बहुत कुछ लोग कहतेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरी रहमत से, तुम्हारे रब की रहमत हमेशा खुली हुई है, उसके दरवाजे खुले, उनसे कभी मायूस ना होना कि रब भी यही कह देगा अब आ गए। अब जब हिम्मत जवाब देने लगी, जब दुनिया ने ठुकरा दिया, जब आंखों पे चश्मे लग गए, जब सुनाई देता नहीं है, कमर झुक गई, अब तुम्हें याद आ गया रब, सारी जिंदगी तो तुमने मुझे याद नहीं किया। वो नहीं ये कहता, फरमाता है इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीया। जब भी तुम्हें कोई कभी ख्याल आ जाए कि तुम्हारा एक रब है जो माफ करने वाला है, तो तुम उसकी तरफ पलट आना, क्योंकि वो सारे ही गुनाहों को बख्श देता है। जमीया उलमा कहते हैं ज़ुनूब ही काफी था, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा, कि वो गुनाहों को बख्श देता है, इतना कहना ही काफी था। लेकिन अल्लाह ताला ने इससे भी बढ़ के आगे फरमाए जमी आ सारे के सारे, कभी ये ना सोचना ये भला नहीं गुनाह मेरा बख्शा जाएगा, अब मेरी नहीं बख्शिश होनी, अब मुझे कैसे बख्शेगा अल्लाह, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, ये ना कभी सोचना, सारे बख्श देगा। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखिए आप इसमें इतनी ज्यादा उम्मीद है, किसी किस्म का भी गुनाह सब बख्श सकता है वो, क्योंकि इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक वो तो है ही गफूर रहीम। गफूर में मुबालगा, ये यानी फाउल के वजन पे बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहीम बार बार रहम करने वाला। बस ये कि तुम एक दफा रियलाइज कर लो कि एक रब है जो बख्शता है और वो बख्श देगा, तो अल्लाह ताला बख्शने को तैयार है। कि इंसान एक दफा कह तो दे कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, और देखिए ना सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, मैं सोचती हूँ कभी माँ बाप भी ना बच्चों से नाराज हो जाए ना, तो कहते हैं दूर हो जा मेरी नजरों से, आज से तू मेरी औलाद नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी, ये नहीं होगा, मेरा तेरा रिश्ता खत्म आज से, जब ज्यादा नाराज हो जाए ऐसे ही होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला उन बंदों को खिताब कर रहा है जो उसके नाफरमान है, ये नहीं कि कोई बड़े फरमा बरदार बड़े नेक, वो नहीं, यहाँ पे वो है जो इनसे गुनाह हुए हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या अमल कर लिए, क्या क्या किस किस किस्म के गुनाह कर लिए, हर एक के गुनाह फर्क है, तन्हाइयों के गुनाह हैं या एलानिया गुनाह किए, या बंदों के हक में किए, या अल्लाह ताला के हकूक को में कमी की, या क्या क्या किया, या कुफर कर लिया, या शिर्क कर लिया, इससे बड़ा तो गुनाह नहीं हो सकता, इतने बड़े बड़े भी गुनाह किए, तब भी अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी मेरे बंदो, अल्लाह अकबर, के वो माँ भी नहीं कहती कि मेरे बेटे, तू फिर भी मेरा ही बेटा है, अल्लाह ताला फरमाता है तू फिर भी मेरा ही बंदा है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रिश्ता है ना, उस चीज को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेंशन किया। ये भी हो सकता है कुल लिल्लदीन असरफू अला, कह दीजिए उन लोगों से, ये भी हो सकता था, या इबादी अंदर लाना, कितनी इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी शफकत इंसान के ऊपर जो है उसको महसूस करें कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटा नहीं है, तुम्हारे गुनाह करने की वजह से ऐसा नहीं है कि दफा हो जाओ तुम मेरे बंदे ही नहीं हो, जाओ जहां मर्जी जाओ अब इन्हीं गुनाहों के अंदर रहो। अगर अल्लाह ताला ऐसे कह देता तो हम क्या करते, कोई फिर ठिकाना ना होता, लेकिन वो फिर भी बुलाता। फिर भी बंदे को आवाज देता, क्या ही बात है ऐ मेरे बंदू। बंदे बख्शीश मांगने में देर करते हैं, अल्लाह ताला बुला रहा है कुरान में, पुकार रहा है अपने इन बंदों को रियलाइज नहीं होता, वो डिले करते हो, कहते कब कर लूंगा तो अब, अभी कौन सी जल्दी है, वो कहते हाँ बुढ़ापे में कर लूंगा, जबकि रब जो माफ करने वाला है, जिसको कोई नुकसान नहीं हमारे गुनाहों का, वो बुला रहा है, बख्शने वाला तैयार है बख्शने के लिए, और जिसको बख्शिश चाहिए वो बदबख्त ऐसा है कि उसको एहसास ही ना हो। तो ये अल्लाह और बंदे का रिश्ता, आबद और माबूद का रिश्ता, वो उसके जरिए अल्लाह ताला ने इंसान को पुकारा है, जितने भी गुनाह कर लो तुम वो मेरे ही बंदे। कभी हम में तुम में भी चाहती, तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम भी तुम भी ते आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। अल्लाह अकबर, वो रास्ते ही भूल गए जो अल्लाह की तरफ जाते थे, वो रब ही भूल गया जिसने पैदा किया, इसने खिलाया पिलाया पाला पोसा इतना बड़ा किया, ये ताकतें ये हिम्मतें ये देखना सुनना बोलना सांस लेना सब में उसकी मोहताजी, उसी को भूल गए। ऐसे नहीं आपको लगता जैसे बच्चा रूठ के चला जाता है ना, नाराज होके घर से निकल जाता है, तो वो बच्चे को तो पता नहीं कभी एहसास हो ना हो, लेकिन माँ बाप जरूर दरवाजे को तकते रहते कि कब इससे हमारा बच्चा वापिस आ जाए। अल्लाह ताला इतना करीम है इतना रहीम है, ये बंदा नाफरमानियां करके अल्लाह से दूर चला गया, लेकिन अल्लाह ताला पुकार रहा है तुम आ जाओ मेरे दरवाजे खुले में, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, तुम मेरा दर छोड़ के चले गए, मैंने अपना दरवाजा नहीं बंद किया, मेरे दरवाजे खुले हैं, इसीलिए फरमाया ना ला तकना तू मेरे रहमत इल्ला, मायूस ना हो ना दरवाजा खुला हुआ है, वही है जो इंतजार कर रहा है कि बंदा कब तौबा करे, हालांकि उसका कुछ जाता नहीं, बंदे तेरी बदनसीबी है कि फिर तू तौबा की तरफ ना आए, फिर तू अपने रब की तरफ ना पलटे, इतने करीम रब को छोड़ के किधर धक्के खाता है, कोई दुनिया इंसान को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकती, वो नहीं दे सकती वो मोहब्बत वो शफकत वो मेहरबानियां वो रहमतें नहीं निचावर कर सकती जो रब की है, दुनिया से मोहब्बत करके देख लो वो कुछ नहीं देगी, ये बेवफा है, हर रब से मोहब्बत करके देखो कि वो क्या देता है, लेकिन इंसान हमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इंसान अल्लाह ताला की कदर नहीं करता जैसे उसको कदर करनी चाहिए, तो कभी तो कोई रिश्ता था ना, भूल गए सब भूल गए, दुनिया में आए इसमें ही लग गए, इतने मगन हो गए कि तुम्हें याद ही ना रहा कि तुम्हारा एक रब भी है, तुम्हें याद ही ना रहा वो ही ना रहा, याद रहा जो रोटी खिलाता है जो पिलाता है जो हजम कराता है जो तुम्हें चला रहा है, उससे इतनी गिले शिकवे इतनी दूरी, किसी ने मुझे पिछले दिनों ही कहा, मुझे इतने दुख भी हुआ, जब इंसान अल्लाह को ना पहचाने तो फिर यही होता है, उसने कहा मेरे पास बहुत क्वेश्चन है बहुत ऐसी बातें हैं मैंने तो जो समझ नहीं आती ना, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे सकता, बहुत उसको गिले शिकवे शिकायतें ऑब्जेक्शंस बाकायदा, ये नहीं कि अपने हालात पे ऐसा क्यों है ये क्यों हुक्म है वो क्यों ऐसा है, अल्लाह अकबर, काश इंसान अपने रब को पहचान जाए ना तो उसकी बोलती बंद हो जाए और उसकी मोहब्बतों का अंदाजा कर लेना, तो इस इंसान का ना रुआ रुआ जो है वो पुकार उठे कि अल्लाह तेरा जैसा कोई नहीं है, इंसान का जोड़ जोड़ अलग हो जाए अगर वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को पहचान जाए कि वो मेरे रब इतना मोहब्बत करने वाला है, अलवदूद इतना मोहब्बत करने, ये उसकी मोहब्बत है ना कि वो बुला रहा है, वरना जाओ जहां मर्जी रुलते फिरो, उसको क्या परवाह, उसकी बादशाहत में क्या कमी है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तुमने अपने आप को गुनाहों में डालना डालते रहो, तुम्हें सब कुछ बता दिया, नहीं सुनते ना सुनो। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो कातिल भी है, जानी भी है, मुजरिम भी है, जिसने क्या क्या नहीं गुनाह कर लिए, वो भी सारे इसमें, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो सब है इसके अंदर। वो जिसको दुनिया भी लानते भेजे और दुत्कारे, वो भी अगर रियलाइज कर ले, और रियलाइज करने के लिए कोई सी किसी, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया जाओ काबा जाओगे तो वहां पे अगर माफी मांगोगे तो फिर होगी। हम कहे हमारे पास तो टिकट ही नहीं आए, हमारे पास तो जाने के बस आए नहीं, वो कहता है बस तुम जिधर हो वहीं पे तुम पशेमानी इतनी आ जाए कि बस मेरे अल्लाह मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तू मुझे माफ कर दे। इतना सा भी, यानी हदीस में आता है कि इतना सा भी कि जितना मक्खी का सार है, इतना सा भी आंसू आंख में आ गया ना कि जो बस आंख के किनारे को इतना सा तुम्हें रियलाइज हो गया, अल्लाह ताला उसी वक्त ही माफ कर देता, उसी वक्त ही माफ कर देता है। कि यानी ये भी नहीं है कि तुम्हें ये करना है उस और ये करना है और फिर ये और ये वाला, नहीं मैं गुनाह माफ करूंगा ये वाला कर दूंगा ना, अज़्ज़ुनूबा जमीया, सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। बस तुम्हें एक दफा निदामत तो हो जाए, एक दफा तुम ये सोच लो कि मैंने पलटना है, एक दफा तुम्हें ये पता हो कि मेरा एक रब है जो माफ करने वाला, ना किसी पादरी के पास ना इमाम के पास। वो तो कहते चर्च में जाओ और तुम कन्फेशन करोगे तो फिर, यानी इंसान अपना सारा कच्चा छट्टा जाके किसी को बताए, उसके सामने भी जलील हो, और उसके बाद फिर उसको कहीं वो कन्फेशन के वो देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं फरमाया, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, दिल ही दिल में अल्लाह से बात करते हो और अल्लाह ताला से तौबा करते हो, बख्शिश मांगते हो, मुझे माफ कर दे किसी जुबान में भी। कोई तुम्हें जरूरी नहीं कि आपको कोई कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं ही आती हो तो आपने उसमें मांग, हाँ पशेमानी जरूर हो, निदामत जरूर हो, हाँ ये पछतावा जरूर हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया मुझसे, हाँ ये जरूर एहसास दिल में हो कि अब मुझे मौका मिले तो अब नहीं कभी करूंगी। ये है तौबा, ये है बख्शिश मांगना, तो अल्लाह ताला माफ कर देता और उसको कोई परवाह नहीं है ना, उससे किसी ने पूछना है अल्लाह तूने क्यों इसको माफ किया, ना उसने ये देखना है कि बूढ़ा होके आया कि जवानी में आया, ना उसने देखना है कि ये इसके गुनाह कितने थे, लाख थे कि 10 लाख थे, करोड़ थे या उससे भी ज्यादा थे, आसमानों की बुलंदियों को छू गए या उससे कम थे, ना उसने तोलने हैं, उसने सारी गुनाहों को डिलीट खत्म। इतना मेहरबान रब कहीं बताओ कि कोई हो सकता, अरहमुर्राहिमीन वाकई वो है। लोग गुन गाते हैं इंसानों के और कहते हैं अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, उसके ऊपर ये क्यों जुल्म हो गया, अल्लाह ताला ने उसको क्यों नहीं रोका, अल्लाह ताला ने ऐसे, तुम जाने ही नहीं कि अल्लाह कौन है इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें पता ही नहीं, वरना कभी कोई गिला शिकवा जुबान पे ना आए। तो ये है वो रब के इन्नहू अल गफूर रहीम, इवन अगर शिर्क भी कर चुके हो तो अभी भी वक्त है माफी मांग लो, अभी भी वक्त है पलट आओ, अभी भी वक्त है तौबा कर लो। शैतान ने कहा था ना, ए अल्लाह मैं इनको बहकाता रहूंगा, मैं बहकाता रहूंगा, जब अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी मैं इनको आखिरी सांस तक बहकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं भी इब्ने आदम को बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगता रहेगा, उसकी आखिरी सांस तक जब तक बख्शिश मांगता रहेगा मैं भी उसको बख्शता रहूंगा। ये तो अल्लाह ताला ने वादा दे दिया। इवन आप देखें, यानी इतनी बड़ी बात है कि असहाबुल उखदूद जो थे, जिन्होंने उस वक्त के ईमान वालों को आग में डाला था, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बुरूज में, इन लदीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनाती सुम्मा लम यतूबू फलहुम अदाबु जहन्नम वलहुम अदाबु नहरी अदाबु नहरी, कि जो फिर तौबा ना करे उनके लिए है। तौबा अगर कर ले वो तो अल्लाह उनको भी माफ करने को तैयार। ईसाई लोग जो शिर्क करते हैं, जो तसलीस का अकीदा रखते हैं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, उनको भी अल्लाह तआला ने फरमाया अफला यतूबूना इलल्लाह व यस्तगफिरूना, क्या तुम तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ नहीं आते? यानी अगर तुम भी तौबा कर लो अल्लाह तआला माफ कर देगा, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है कि शिर्क जैसे गुनाह को भी अल्लाह तआला माफ करते। वो जिसने 99 लोगों का कत्ल किया, लोग कहते हैं कि हकूकुल इबाद, वो नहीं अल्लाह माफ करेगा, बाकी सब माफ कर देगा। बाकी यानी अल्लाह के हक में जितनी मर्जी कमियां कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में वो छुट्टी ले लेते। अल्लाह के हक में कमियां कर लो, लोगों के हक में ना, ठीक है, लोगों के हकूक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है जब इंसान इंसानों के साथ भलाई करता है। लेकिन 99 का कातिल, उसको भी तो अल्लाह ने माफ किया ना, उसने अल्लाह की जनाब में तो नहीं कुछ किया था, इंसानों के हकूक, इससे ज्यादा बड़ा हक क्या मारना कि उसकी जान ही ले ली, अल्लाह ने माफ किया ना। अब अल्लाह ताला उनको कैसे कॉम्पेंसेट करता है वो अल्लाह ताला का काम है। लेकिन कभी ये ना सोचे ये तो बस माफ ही नहीं होना, नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगा अगर तुम माफी मांगोगे। हाँ, अगर वो लोग जिंदा है तो आप जाके उनसे माफी भी मांग ले, ताकि यहीं पे सारा कच्चा चटा सारा साफ हो जाए, हिसाब साफ हो जाए। हदीस में आता है एक बूढ़ा शख्स जो था ना, लकड़ी टेकता हुआ आप सल्लम की खिदमत में आया, उसने कहा कि मेरे छोटे मोटे गुनाह बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैंने ऐसे गुनाह किए हैं और इतने सरकशियां और इतनी नाफरमानियां की हैं, क्या मेरे लिए कोई बख्शिश है, मुझे बख्श दिया जाएगा? यानी अब वो बूढ़ा हो चुके, अब सोचेंगे कितने गुनाह होंगे, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अब बुढ़ापे में आके कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अल्लाह की तौहीद की गवाही नहीं देता? उसने कहा हाँ। रिसालत की गवाही देता? उसने कहा हाँ। अल्लाह ताला तेरे गुनाह माफ कर देगा फिर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बशारत दी। तो बंदा क्यों मायूस होता है? वो मायूस असल में हम तब होते हैं जब हम ना अल्लाह ताला को अपने जैसे इंसानों की तरह समझने लगते हैं, कि जब इंसान नहीं माफ करते तो इंसानों का तो हाल ये है ना कि अगर वो माफ कर भी दे तो दिल में जरूर रखते हैं, कहते हैं क्या करें, बस बात तो आ ही जाती ना, भूलती तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला भुला देता। अल्लाह अकबर। मगर ये बंदे को भी नहीं चाहिए कि इस उम्मीद पे फिर गुनाह करता रहे कि माफी तो मिल ही जानी है, वो तो माफ कर ही देता है, नहीं फिर ये ना करें, ये दलेरी है गुनाहों के ऊपर, बजाय इसके कि इंसान फिर और ज्यादा अल्लाह ताला के करीब आ जाए कि अल्लाह तू इतनी मोहब्बत करने वाला, ए अल्लाह तू इतना मेहरबान। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि इंसान इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की तरफ आए कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन गुनाहों पे दलेर ना हो। तो अल्लाह ताला ने एक मायूस इंसान को भी मायूसी से निकाला। बाज लोग मायूस होके फिर क्या करने लगते हैं, शराबें पीने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि गुनाहों की भी अपनी नहुसत होती है ना, और गुनाहों की वजह से इंसान को कहीं चैन नहीं आता, और शैतान भी हर वक्त उसको ये कह कह के, बाज लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि ये हमसे हो गया, अब हमारी कोई माफी नहीं, वो अपने आप को खुद ही नहीं माफ कर पाते। तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह ताला को माफी पसंद है, इसलिए वो माफ करता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे या इबादी कह के बंदे को जो अपना और अल्लाह का रिश्ता है ना वो याद दिलाया, और हमें याद दिलाया कि इस रिश्ते को कभी ना भूलना, भूल भी गए थे तो अब लौट आओ, अब एक नई जिंदगी का आगाज कर लो। अब इंसान देखे दोबारा से स्टार्ट ले सकता है इसके बाद, इंसान के अंदर से वो गिल्ट जो उसको हर वक्त तंग करती है वो अल्लाह ताला खत्म कर देता है कि कोई बात नहीं तुम आ जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह करते 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 जमीन और आसमान भर दो, हालांकि कोई इतने नहीं कर सकता, लेकिन इतने करो कि जमीन और आसमान भर दो, फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो तो बेशक वो तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह अकबर। और ये सिर्फ इस्तिग़फ़ार की तस्बीह नहीं, क्या निदामत, शर्मिंदगी, ये शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए। और अपने गुनाहों को कभी हल्का ना समझे, मुनाफिक है जो अपने गुनाहों को हल्का समझता है, ऐसे जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी। मोमिन जो है वो छोटे छोटे गुनाहों को भी इतना समझता है कि जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हो, तो पहाड़ मेरे ऊपर गिराएगा। और कभी भी ये भी ना सोचे, ये भी शैतान के वसवसे होते हैं, अब मुझसे कौन सा तौबा पे कायम रहा जाएगा, इसलिए मैं अभी करती ही नहीं हूं तौबा, एंड में करूंगी, ताकि सारे गुनाह कर लूं फिर करूंगी। नहीं, आज ही करें, अभी करें। हमें क्या पता कि हमें मोहलत मिलेगी कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है ना, जिसको यकीन हो गया कि उसका एक रब है और वो गुनाह माफ करता है, तो मैं उसको, मुझे परवाह नहीं, फिर मैं उसको गुनाह माफ कर दूं। तो इतराफे गुनाह बड़ी चीज है। देखिए आप, ये कहना हमने कौन सा इतने गुनाह किए हैं कि अब हम माफिया ही मांगते जाएं, हमने कौन सा ऐसा कुछ कर दिया, ये तो फिर इसका मतलब फिर माफी क्या इंसान मांगे। मैं तो सोचती हूँ माफी की, तौबा करने की तौफीक भी मिल जाना ना, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत होती। वो बाज लोग गुनाह करते रहते तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, और वो इसी तरह कहते रहते हैं, कर लेंगे ना कर लेंगे, आज नहीं करना हमने, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, जब ये काम हो जाएगा तब करेंगे, एक ही दफा तौबा करेंगे, बार बार तो नहीं ना करनी, और मेरी कौन सी तौबा कबूल होनी। और देखिए ये सबसे ज्यादा कुरान की खुशी देने वाली आयत है, सबसे ज्यादा। हाँ, तो इतराफे जुर्म भी इंसान करे, गुनाहों का इतराफ भी करे, और गुनाहों पे अड़े भी नहीं, वरना फिर शर्मिंदगी इस बात की, अगर अड़ ही जाना है उसके ऊपर, अगर वो ही करते रहना और यही सोचते रहना मैंने कत्ते तो जाना है, मैं अभी बस माफी मांग लेती हूँ, ये नहीं। तो बहुत प्यारी आयत है। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरह आप इस तौबा पे कायम कैसे रह सकते हैं। अब तौबा कर ली है ना, तो अब कैसे कायम रह सकते हैं। देखो ये ना हो कि हमारी तौबा टूट जाए, तो इसकी हिफाजत के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, कि बस मेरी तौबा कायम रहे। अनीबू इला रब्बिकुम, और रुजू करो अपने रब की तरफ। यानी मैंने आपको बताया इनाबत क्या होती है, इनाबत है बार बार पलटना, बार बार पलटना, बार बार लौटना अपने रब की तरफ, लौटो बार बार, बार बार पटो वो असली मूलहू, और इस मती हो जाओ, इस्लाम ले आओ का मतलब क्या, सबमिशन होती है इस्लाम, यानी सबमिट कर दो अपने आप को अल्लाह ताला के आगे, बगावत ना करो, अकड़ो नहीं। तो पिछली जो बात है अब इसी की कंटिन्यूएशन है आगे। पिछली आयत जो है ना, कि जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, वो नंबर वन क्या करें, ला तकना तो मेरा रहम देगा, नंबर टू क्या करें वो, अनीबू इला रब्बी को, समझ आई। तो वो अपने रब की तरफ इनाबत करें, रुजू करें, झुके, और इनाबत समझने के अंदर की कैफियत है, और इस्लाम बाहर की कैफियत है, सबमिशन बाहर के, अनीबू अंदर। इनाबत के बारे में बहुत सारे अकवाल उलमा ने बताए हैं, वो जैसे इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, तौबा और इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, इसी तरह गफलत से निकल आना, अब गफलतें मैंने छोड़ देनी है, अब नहीं अल्लाह से दूर रहना, फिर नेकियों की तरफ लपकना, गुनाहों को छोड़ देना। ये मैं आपको डिफरेंट अकवाल को समराइज करके बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले अनीबू में क्या क्या आता है। दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास हो जाना, ठीक है, दिल में ये होना कि अल्लाह ताला इतना तो अजीम है, तू इतना बड़ा है, मैं कैसे तेरी नाफरमानी कर सकती हूँ, इताब पे जम जाना, और इसी तरह अल्लाह ताला के मकाम को पहचानना, उसके जलाल के आगे आजजी करना, अल्लाह ताला से दोस्ती कर लेना। नाराज होके चले गए थे ना, जब गुनाह किए तो दूर चले गए, अब वापस पलट आना, अल्लाह ताला से वापस दोस्ती कर देना, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ देना और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना। तो जब इंसान अनीबू इला रब्बिकुम करेगा ना, जो गुनाहगार है उनको ये कहा जा रहा है कि इनाबत करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, और असलिमू करेगा जवारे के साथ, अपने आजा के साथ भी, बस फरमाबरदारी में लग जाओ, नेकियों के कामों में मना। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, इस काल अलहु रब्बू अस्लिम वला अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, उन्होंने एक बात ही नहीं अगली की, उन्होंने कहा मैं अपने रब के आगे झुकता हूँ, मुती होता हूँ, फरमा बरदार होता हूँ। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, वो तो पहले ही फरमा बरदारों में से थे। वो हमें हमें तो कितनी जरूरत है कि हम अल्लाह के आगे झुके, इस्लाम अपने आप को मुकम्मल सुपुर्द कर देने वाले की माना देता है, मुकम्मल सुपुर्दगी, सबमिशन, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना। तो यानी इंसान अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो किसी शख्स ने पूछा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया तुम अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ कर लो, ये बस अल्लाह ही है मेरा। तो ये अल्लाह की फरमा बरदारी है ना। अब देखे ना, इंसान जब गुनाह करता है तो दो ही उसके लिए रास्ते हैं, या तो वो इनाबत करे और तस्लीम, और या फिर वो गुनाहों पे अड़ जाए। तो गुनाह पे अड़ना नहीं है, फौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी है और रुजू करना है, और मैंने आपको सारी रुजू की बात बता दी। अब आप इनाबत को प्रैक्टिकली देखना चाहते ना, मैं इस एक अच्छी छोटी सी मिसाल से आपको बताती हूँ। इनाबत जैसे हम फोन की इनाबत करते हैं, हम अपने फोन की तरफ इनाबत करते हैं, कैसे बार बार इसकी तरफ रुजू करते हैं ना, देखा ना आपने, मिनट होता नहीं है तो हम टिक हुई तो हमने फौरन फोन उठा लिया, किसने मैसेज किया, या बार बार आके देखते हैं कोई बात तो नहीं, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं कर दिया, ये इनाबत है। इस तरह अब आप तो समझ आ गई होगी ना इनाबत क्या है। इस तरह अपने रब की तरफ करो जैसे फोन की तरफ करते हो। बात तो बुरी है, ऐसी तो रही है, अल्लाह ताला की तरफ तो और ज्यादा इनाबत होनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे, और झुक जाओ उसके आगे। मिन कबल अय्यातिकुम लातुबतुम लातुनसरून, इससे पहले कि अजाब आ जाए, क्योंकि गुनाह करेंगे तो अजाब ही आएगा ना, कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। तो अजाब आने से पहले माफी भी मांग लो, इनाबत भी करो, झुक भी जाओ। जब तुम ऐसे करोगे तो अल्लाह का अजाब टल जाएगा। तुम मला तुम सरून, फिर ये ना हो कि अगर अजाब आ जाए ना, फिर तो कोई मदद नहीं दिया जा सकता। अब इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि अब तौबा तो कर लिया, अब उसके बाद जो मर्जी करो, अब तो पिछला साफ हो गया, अब तो हमारी यानी अब और ज्यादा रिलैक्स हो गए, अब जो मर्जी गुनाह करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अनीबू इला रब्बिकुम वासलिमू लहू, और फिर भी डरते रहो अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। और ये भी के यहां से हमें पता चलता है मिन कबली अय्यातिकुम अजाब, यानी इससे पहले के अजाब आ जाए तो ये सब काम कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंसान डिले ना करे, कि तौबा को डिले करता रहे, वो कर लेंगे कर लेंगे, अभी क्या वक्त है, अभी बच्चों की शादी हो जाए फिर तौबा एक ही दफा कर लेंगे, हराम खाने से तौबा उस वक्त कर लेंगे, हिजाब करना बेपर्दगी से तौबा उस वक्त कर लेंगे, फलां चीज से तौबा उस वक्त कर लेंगे, अभी सारा कुछ कर लो, तौबा के लिए हमने एक टाइम रखा। नहीं, तौबा कर लो और अल्लाह ताला की तरफ पलट के आ जाओ और उसके फरमा बरदार बन जाओ इससे पहले कि अजाब आ जाए, वो पता भी नहीं चलेगा फिर। वत्तबी अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और नंबर टू क्या करो या नंबर थ्री कह दें आप, पहली तौबा कह दें, उसके बाद इनाबत कह दें, फिर उसके बाद इस्लाम कह दें, इनाबत और इस्लाम यहाँ एक ही कर लें, और उसके बाद वत्तबी आओ, ये स्टेप्स है ना, इत्तेबा करो, फॉलो करो। क्या आसनामा उन्जिला इलेकुम, आसन की बेहतरीन की जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और बेहतरीन चीज क्या नाजिल की गई तुम्हारे रब की तरफ से, वो ये कुरान है, कुरान और हदीस, क्योंकि हदीस भी अल्लाह ही की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अल्लाह ही की तरफ से पैगाम था, उससे बाहर नहीं कुछ फरमाया। तो ये आसन कलाम है, ये आसन चीज है, इसलिए इसकी इत्तेबा करो, यानी कुरान करीम को फॉलो करो, इसके अहकामात को फॉलो करो। हमने क्या फॉलो करना अगर हमें कुछ समझ ही नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं कुरान में है क्या, कुरान कहता क्या है, हदीस में है क्या, ये बातें अगर दिल को तंग करने लगती हैं तो फिर हम क्या फॉलो करेंगे? अगर या इनकी बजाय और चीजें अच्छी लगती हैं, इस तरफ आते ही नहीं है तो फॉलो किसको करेंगे? कुरान को आसन कहा गया, इसीलिए तो है ना, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि उसने ये कलाम नाजिल किया। आप सदर में फरमाते थे ना नमाज में, हमने तशहुद के बाद आसनुल कलाम, कलामुल्लाह व आसनुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो कुरान और हदीस, कुरान और सुन्ना, या जिसको कह सकते उसको थामे ताकि गुमराही से बचे। तो ये इसकी पैरवी करना भी इंसान को सीधा रखेगा। अब तौबा करके फिर फ्री हैंड नहीं, अपनी इस्लाह के रास्ते पे चल चुके हो। अब जब कह दिया ना कि मेरे से गलती हो गई अल्लाह, मैंने नहीं अब ये करना, अब रास्ता यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, जिधर जा रहे थे गलत रास्ते पे चले हुए थे, यू टर्न लेके वापस अल्लाह की तरफ पलट आए। तो अब किस रास्ते पे चलना है? अब इस्लाह के रास्ते पे चलना। इस्लाह कैसे होगी कि रुजू करें अल्लाह की तरफ, फरमा बरदार होंगे, सबमिट कर दें उसके सामने, और इस कुरान की पैरवी करें। फिर भी अगर कोई पूछे कि कुरान पढ़ना फर्ज है कि नहीं, कुरान एक बार को समझना वो क्या जरूरी है कि नहीं, आप बताएं। आसन कलाम यही है, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज ये है। फिर भी इंसान, जब पैसे हमने पहले भी तो पढ़ा है आसन उल हदीस, इसका पिछले सबक में ही पढ़ा, ये आसन उल हदीस है, उसको छोड़ के इंसान सोचे कि और चीजें हैं जो मेरे लिए आसन है, जबकि अल्लाह ताला ने इसको आसन फरमाया। जाहिर है अल्लाह का कलाम है ये, जो कुछ भी इसके अलावा है वो इंसानों की बातें हैं ना। फिर भी अगर अहमियत नहीं देंगे तो फिर हमने इसकी कदर नहीं पहचानी। मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़तातन व अंतुम ला तशऊरून, इससे पहले के अजाब आ जाए। देखिए पहले क्या आया, कि इससे पहले के अजाब आ जाए फिर तुम्हें कोई मदद नहीं देगा। अब आया इसकी तरफ आ जाओ, इसको फॉलो करो, ये नहीं अच्छा ये हुक्म आ गया कर लेंगे, ये कौन सा अभी इतना जरूरी है, कर लेंगे जब ये हो जाएगा, कर लेंगे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कर लेंगे जब ये, हमने हर एक चीज को लिए टालने के लिए ना एक वक्त रखा होता है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर कर लेंगे, जब ऐसा हो जाएगा फिर कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है इससे पहले कि अजाब आ जाए अचानक, हो सकता है कि हमने सोचा हो कि हम उस वक्त करेंगे जब ये काम हो जाए, और उससे पहले ही कोई अजाब आ जाए। और अजाब ये इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कलेक्टिवली भी आ सकते हैं, कौमों पे भी आते हैं, जब कौमें गुनाह करती हैं। जैसे आपसे सल्लम ने फरमाया ना, अब इस हदीस से आपको पता चल जाएगा, ये जो पीछे भी हमने सारी बातें की, जब जमीन में बुराई आम हो जाती है तो अल्लाह ताला अहले जमीन पर अपना अजाब नाजिल फरमा देता है। अगर इसमें नेक लोग होते तो वो भी इसमें मुब्तला हो जाते, जिसमें दूसरे लोग होंगे, फिर अल्लाह की रहमत की तरफ वो लौट जाएंगे, यानी नेक लोगों को फिर अल्लाह ताला उठा लेगा तो अपनी रहमत में दाखिल कर देगा, लेकिन अजाब सबके ऊपर ही आएगा। उसमें ये नहीं होगा कि चुन चुन के बुरे लोगों पे आ रहा है और नेक लोग जो है ना वो आराम से अपने घरों में बैठे, ऐसे नहीं, पूरे फिर पूरी पूरी बस्तियों पे ही आता है अजाब। तो जो बुराई है, जैसे हमने पहले पढ़ा वासाबहुम सैयातु मा कसबू, पहुंची उनको जो बुराई उन्होंने कमाया था उसकी, तो वाकई जो अपनी कमाई है इसका वबाल आता है, कि आपसे सब ने फरमाया ना, जब जमीन में बुराई आम हो जाए, आम हो जाए तो फिर सबके ऊपर ही आता है अजाब। तो आओ फॉलो करो इसको, इससे पहले कि अजाब आ जाए अचानक, अन तुम ला तशरून। और ये जो अचानक वाला होता है ना, ये बहुत तकलीफ दे ज्यादा होता है। एक होता है एक्सपेक्टेड है, ये ऐसे हो रहा है, एक अचानक इंसान की जो पकड़ हो जाए, अचानक इंसान के ऊपर जो ऐसे आए ना, एक सडन, एक वो कोई शॉक ड्रग जाए कि ये हो क्या गया मेरे साथ, वो बहुत तकलीफ दे होता है। और वो कभी कभी इंसान के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंसान को नाफरमानी करते हुए लाखों दफा सोचना चाहिए कि क्या मैं इसकी सजा भुगत सकता हूं, पहले ये सोच लें। अगर भुगत सकते हैं तो 100 दफा कर लें, फिर जाए सोचे उन सजाओं को भुगत सकते हैं क्या। ये जो कुरान बताता है सजाएं, इनको बर्दाश्त करने की हमारे अंदर ताकत है? जो एक गर्मी ना बर्दाश्त करें जरा सी भी, पहले इसको जरा टेस्ट करके देख ले। हाँ, करने से पहले अपनी उंगली आग के ऊपर रख के देख लें तो ये आग तो कुछ भी नहीं, वो ये आग तो, ये बेचारी आग तो उससे पनाह मांगती है, जहन्नुम की आग से। ये तो ठंडी करके दुनिया में भेजी गई, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लिहाजा गुनाहों पे दलेर ना हो, बहुत बहादुर ना बने कि मैं तो ये कर सकती हूँ और कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे किसी की परवाह नहीं। या अंतकूला, अब तीन बातें कही गई ना यहाँ पे, अंतकूला के कहे कोई नफ्स, ये ना हो कि ऐसा हो जाए, यानी ये बताया गया, ये ना हो कि कोई ऐसा हो जाए कि अचानक तुम्हारे पर अजाब आ जाए, अचानक पकड़ हो जाए और उसका तुम्हें पता ना चले, और ये ना हो अंतकूला के तुम में से कोई कहे, क्या कहे कोई नफ्स, क्या कहे, या हसरत, हाय हसरत। हसरत किस चीज पे होती है? जो चीज हाथ से निकल जाए, उसका जो गम होता है इंसान को, अलामा फर्रतु मिन जंबिल्ला, जो मेरे से कमी हो गई अल्लाह की हक में, अल्लाह ताला के हक में जो मैंने कमी कर दी। हाय, इंसान ये हसरत करना शुरू कर दे, इस पे पछताए, इसके ऊपर उसको गम लग जाए। अब देखिए दुनिया के अंदर जो हसरतें होती हैं वो किस तरह की होती हैं। हसरतें, हमारी हसरतें, हमारी हसरत तो ये तो कभी होती नहीं कि हाय हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी नेकियां की होती, ऐसी हसरतें नहीं होती। ये जरूर हसरतें नहीं, हाय काश हम वहां पे इन्वेस्ट कर देते, आज देखो कितनी वो जमीन महंगी हो गई है, काश हम उस वक्त ले लेते ना, लोगों ने लेके देखो कितना प्रॉफिट बना लिया। उसकी तरह इतनी हसरत होती, सारी जिंदगी हसरत कहते रहते हैं। ये तो हमारे गरीब थी जब हम यहाँ पे रहते थे तो इतनी सस्ती थी, ओ काश हम वहां पे इन्वेस्ट कर देते, देखो आज उसके शेयर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, फलाने मुझे कहा भी था, कितनी हसरत होती है। काश मैं भी वहां चली जाती, मुझे भी ये जॉब मिल जाती, आई मैं वहां पे पहुंच ही नहीं सकी, मैं जा ही नहीं सकी। काश हम पहले रिश्ता डाल देते, वो हमारे बच्चे का रिश्ता हो जाता, देखो कितना अच्छा था। हम हसरतें इस तरह की है हमारी, हालांकि ये तो हसरत की कोई बात ही नहीं। असल हसरतें वो होंगी जो इंसान फिर मौत के वक्त करेगा या कयामत के दिन करेगा, जिन रिग्रेट्स का अब कुछ नहीं हो सकता और इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। पहली तो ये हसरत, अल्लाह ताला फरमाते ये ना हो कि फिर तुम मान जाओ, तुम इत्तेबा करो इसका, जो अहसन है जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी इस कुरान का और हदीस का इत्तेबा करो, इससे पहले कि तुम कहो हसरतें करो कि हाय काश। ये पीछे से सारी कनेक्टेड है बात, समझ आ रही है आपको बात? कनेक्ट मैं आपको करके बता रही हूँ कि किस बात पे हसरत की बात आई, कि ये ना हो कि फिर तुम नहीं अमल करो और उसके बाद फिर कहो, ये ना हो तो इनाबत नहीं करो, तुम सबमिट ना करो, तौबा ना करो, ये सारी बातें जो पीछे आई उसके बाद फिर तुम हसरतें करने लगो, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने अल्लाह ताला के हक में कमी कर दी। और अल्लाह के हक में कमी क्या है? जब इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता तो उसने हक में कमी की ना, जब इंसान इस कुरान पे अमल नहीं करता तो उसने अल्लाह के हक में कमी की, जब इंसान वो जो अजर व सवाब की अल्लाह ताला ने मौके दिए हैं उनके उनको करके वो अजर नहीं कमाता तो उसने अल्लाह के हक में कमी की। तो ये कमी है, जब इंसान के पास मौका है कि अल्लाह का कुर्ब पा ले और वो परवाह ही नहीं करता, इस चीज की कोई फिक्र ही नहीं, इस तरफ तवज्जो ही नहीं, तो कमी की ना, वो फिर अब पछताएगा कि हाय मेरे पास चांस भी था, मैंने क्यों कमी कर दी अल्लाह के हक में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक क्या है? कि उसकी इबादत की जाए, और उसकी इताअत की जाए, उसकी बात मानी जाए, फिर भी इंसान इस चीज को इग्नोर कर दे और अल्लाह की माने ही ना, तो फिर बहुत पछतावा होगा। और वाकई हम सबसे ज्यादा कमी जो है ना अल्लाह के हक में करते हैं, अगर देखें लोगों, फिर भी लोग हमसे पीछे पड़ पड़ के अपने हकूक दिल निकलवा ही लेते हैं जिसका जोर चलता है, लेकिन अल्लाह के हक में कमी करने, जैसे ना घर के काम होंगे या कहीं जाना होगा, नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी भी पढ़ ली, अगर तो कोई बात नहीं, अगर जल्दी जल्दी भी पढ़ ली, अगर कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी करते, आखिर तो हमने वहां जाना है ना, फिर वो नाराज हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाए। अब देखिए ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना, अब कितनी मिसालें ले लें। अब ये क्लास की बात है, अरे नहीं, वो मेरा काम बहुत जरूरी है, वो करना जरूरी है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो बाद में भी होता रहेगा। इन चीजों को जो अल्लाह ताला के हकूक है ना, या अल्लाह की फरमाबरदारी का काम है, ये मिसाल के तौर पे एक अल्लाह का हुक्म मानना है, उसको हम बहुत लाइट लेते हैं, और जो दूसरे काम है या दूसरों के हकूक है या दूसरों की नाराजगी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, वो ना कुछ कह दे, वो ना ऐसे समझ ले, अल्लाह ताला का हक है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए, ओ वो कोई बात नहीं है, वो लाइट सी चीज है, वो कोई बात नहीं, कर लेंगे, उसकी खैर है। लेकिन उस दिन इंसान हसरत करेगा, अफसोस करेगा, क्यों मैंने कोताही की, क्योंकि अब पता चलेगा ना कि उसकी क्या रिजल्ट निकल रहा है। कि कहा हदीस में आता है कि हर जहन्नमी को जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाएगा, और वो उस वक्त हसरत करेगा कि हाय काश मैं भी दुनिया में हिदायत पा जाता तो आज ये मेरा ठिकाना होता। तो फिर सोचिए अफसोस का क्या आलम होगा, कितनी हसरत होगी कि लोगों के पास भी मौके थे, उन्होंने फायदा उठा लिया, और मैं क्या करती रही, मैंने अपना वक्त गवा दिया, मैंने अपनी जिंदगी गवा दी, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, या मैंने फलां को अपना दोस्त बना लिया था, उसने मुझे उल्टे रास्ते पर लगाया, कितनी उसके ऊपर पशेमानी होगी। मैं ऐसे लोगों में उठती बैठती थी जो ना खुद अल्लाह की तरफ आते थे ना मुझे आने देते थे, ये मैंने क्या कर दिया, कितनी ये सारी बातें हसरतों को और पशेमानियों का सबब बनेगी। अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अल्लाह अकबर कि अगर कोई शख्स अपने योमे विलादत से लेकर इंतहाई उम्र रसीदगी तक, यानी बुढ़ापे तक, मरने के दिन इतनी उम्र पाले कि वो बूढ़ा हो जाए और मरने के दिन तक अल्लाह की इताअत में चेहरे के बल घिसटता रहे, तो वो भी कयामत के दिन अपने इस अमल को हकीर समझेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, मैं किधर अपना वक्त गंवा बैठी, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, मैंने क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह को याद नहीं किया। देखे ना इंसान इस पे भी पछताएगा कि मैं उस मजलिस में क्यों गई जहां पे अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ, मैं वहां क्यों बैठी जहां पे अल्लाह की याद नहीं थी, मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों उठती बैठती रही जो मुझे अल्लाह की इताअत से रोकते रहे। तो वो इंसान वो भी हसरत करेगा, ये जो सारा वक्त नेकियां करता रहा ये भी इंसान समझेगा ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, मुझे इससे भी ज्यादा करना चाहिए था। सोचें कि फिर कितना करने की जरूरत है और कितनी ज्यादा पछतावे बन जाएंगे ये गुनाह जो है ना, जिनको आज खुश हो के करते हैं और जिन पे तारीफें भी बटोरते हैं, लोग भी तारीफें करते, जाहिर है जो गुनाह कर रहे होते हैं आजकल तो हर एक को शौक होता है दूसरे को बस खुश कर देना, लोग गुनाह कर रहे हैं हम उनकी तारीफें कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वाह क्या जबरदस्त काम आपने किया, हम भूले नहीं समाते, यही गुनाह हसरत बन जाएंगे, ये गुनाह पछतावे बन जाएंगे, इन्हीं गुनाहों पे इंसान उस दिन रोएगा मैंने क्यों कर लिए। वो ही मजलिस से जिनसे उठ के आते हैं कहते हैं बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, और वहां पे अल्लाह का जिक्र एक भी नहीं हुआ, उन्हीं पे रोएंगे जिन पे आज थैंक यू कर रहे होते हैं कि आपने हमें बुला लिया इस मजलिस में, हमें तो मजा ही बहुत आया, और उन्हीं एक्टिविटीज में जिनमें हमें आज बहुत फन मिल रहा है, बड़ी हमारी एंटरटेनमेंट हो रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या और कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर इंसान पछताएगा, मैंने अल्लाह के हक में क्यों कमी कर दी, ये मैंने क्या किया। इन कुंतु लमिन साखिरीन, और बेशक मैं तो था मजाक उड़ाने वालों में से। ये ना हो कि इंसान ये कहे, ये अल्लाह ताला ने बता दिया, क्योंकि कोई लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे, तुम ये उनमें से ना हो जाना, ये तुम ये कहो कि हाय काश मैं मजाक उड़ाने वालों में से। तो किन का मजाक उड़ाते थे, दीन का ना, रसूलों का, अल्लाह की बातों का, कितनी कॉमन है ये चीजें। दीन को तो सबने ऐसे ही समझा हुआ कि कुछ कोई भी उसके ऊपर कोई बात कर ले, नोबडी माइंड्स, राइट। आप किसी के ऊपर बात कर दे, किसी को बुरा कह दे, या कोई बैठा हो तो आप उसके ऊपर कोई ऐब निकाल ले, देखो जरा फिर वो आपको क्या कहता है। लोग जरूरत नहीं करते, या मैं कहेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें कुछ कहेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन के ऊपर फ्री हैंड सबने ऐसे लिया हुआ कि किसी को परवाह ही नहीं, सब बातें बनाते, मजाक करते, मजलिसों में मजाक होते, हंसते हैं उसके ऊपर, देखो ये क्या बात है। औ तकूला, या कहे, अब ये पिछली बात कंटिन्यू हो रही है, पहली बात क्या कही, या हंस रहा था, ये ना हो कि ऐसा हो कि तुम ये कहो, या कहे कोई नफ्स, लव अन अल्लाह हदानी लकुंतु मिनल मुत्तकीन, अगर अल्लाह हमें भी हिदायत देता तो हम भी मुत्तकी हो जाते, हम भी तकवा वाले, यानी अल्लाह पे डाल दिया उस वहां सोच के कि ये आज हमें जो मिल रहा है, ये बजाय ये सोचते कि हमने खुद अपना बुरा किया, कहते हैं अगर अल्लाह हमें भी हिदायत देता तो आज हम भी तो देखो ना इनके साथ होते। बेशक हिदायत अल्लाह ही की तरफ से होती है, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, लेकिन अल्लाह ताला उसी नफ्स को हिदायत देता है जिसमें तलब होती है। तुमने कितनी तड़प तड़प की अल्लाह ताला से दुआएं की, तुमने कितनी तलब दिखाई, तुम कितने मारे मारे फिरते थे हिदायत के लिए, पैसे के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, ठीक है, स्टेटस के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, कुर्सियां पाने के लिए, वोटों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, किसी तरह हमें मिल जाए, हिदायत के लिए भी कभी किसी ने इस तरह स्ट्रगल की हो और फिर ना मिले तो फिर बताओ, लेकिन जब खुद तलब ही नहीं, हिदायत का पैगाम घरों में पड़ा हुआ है, उसकी तरफ को तवज्जो ही नहीं, हिदायत आ चुकी है, पैगंबर की बातें हम तक महफूज पहुंच चुकी हैं, घरों में रखी हुई किताबें, किसी को उठाने की फुर्सत नहीं, और वहां जाकर कहेंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत देता, अल्लाह ताला ने तो हिदायत का पैगाम भेज दिया था। आगे इसका ही जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है 59 आयत में, लेकिन वहां पे कह रहे हैं अल्लाह मुझे अगर हिदायत दे देता, देख लें कितनी हसरतें होंगी, हिदायत की हसरत होगी, ये नहीं कहेगा अल्लाह मुझे भी पैसे दे देता, दुनिया के अंदर मैं तो गरीब रहा, अल्लाह मेरी भी दिनों दिन खुशियों के हो जाते, मुझे भी जॉब मिल जाती, मेरा भी बिजनेस अच्छा हो जाता, कोई चीज की नहीं हसरत हो रही, हाँ हिदायत की हो रही, जिस हिदायत को आज कुछ नहीं समझते, बल्कि कोई हिदायत का पैगाम लेकर भी आए तो उसको भी रिजेक्ट करते हैं, जाओ हमारे पास टाइम नहीं है, उस दिन इंसान इसी हिदायत के लिए हसरत करेगा, काश मुझे भी ये मिल जाती, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते ना, आज इसको फारिग लोगों का बस मशगला समझते हैं, आज इसको ये समझते हैं ना हमें इसकी क्या जरूरत है, आज इसको फालतू काम है ये कहते हैं, इसकी तरफ आना कोई नहीं चाहता, कल इसी के लिए हसरत करेंगे कि काश मैं मुत्तकी में से फिर हो जाता, मैं भी मुत्तकी हो जाता, अब एहसास हो गया कि कितना तकवा जरूरी था, तकवा क्या है, गुनाहों से बचना अल्लाह के डर की वजह से। फिर अल्लाह ताला तीसरी बात फरमाता है, फिर ये ना कहना औ तकूला ही ना तरल अजाब, कि जब देख ले कोई नफ्स अजाब, तो ये ना हो कि वो ये कहे लव अन्ना ली कर्रतन फाकूना मिनल महसिनीन, काश मेरे लिए एक दफा वापसी हो जाए, ए वन मोर चांस, ओनली वन चांस अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं भी मोहसिनीन में से हो जाऊं, ये भी नहीं कहता सालेहीन में से, ये भी नहीं कहता मोहसिनीन में से, आपने पढ़ी थी ना पिछली दफा मोहसिनीन की डेफिनेशन, उस वक्त हम कहते हैं कितनी मुश्किल है मोहसिन बनना, लेकिन वहां जाकर कहेगा एक दफा हो जाए तो मैं तो मोहसिन बन के ही रहूंगा, अल्लाह अकबर, जब वक्त खत्म हो गया, जब हाथ से चीज निकल गई, तो अब कह रहा है कि काश मेरे ऐसा होता, और आपने सूरह मोमिनून में पढ़ा है ना, इंसान अपनी मौत के वक्त भी कहेगा, जो गफलत में जिंदगी गुजार चुका, या गुनाहों में, या कुफर शिर्क में जितने भी नाफरमान है वो सब मौत के बाद कहेंगे अल्लाह इनको क्या हमें एक दफा वापस जाने दे, अल्लाह इनको क्या हमें छोड़ दे, हमें एक दफा वापस जाने दे। हम वो अमल करेंगे जो हमने पहले नहीं किए, नेकी के काम। तो अब अजाब को जब देखेंगे ना तो कहेंगे हाय वन टाइम, अल्लाह हु अकबर, हम सबको ये टाइम मिला हुआ लेकिन आज हमें नहीं परवाह है मोहसिन बनने की, ना साले बनने की भी नहीं परवाह। अगर इंसान ये समझ ले कि ये मुझे वापस भेज दिया गया और अब मुझे मिल गई है वो जिंदगी, तो फिर जो करना है कर लो। सालेहीन सल्फ सालेहीन इसी तरह सोचा करते थे पुराने हमारे जो थे ना असलाफ, वो ऐसे ही सोचते थे कि हमें वापस जिंदगी मिल गई है, अब हम वापस आ गए, अब करो जो करना है जिसके लिए वहां पे रोगे। हमने इजी मामला समझा हुआ, इसलिए हम तो कहते हमारे हमने थोड़ी ना कोई अजाब देखना है ना हमें वहां पे कोई हसरत होनी है, हम तो पूरी कंप्लीट जिंदगी गुजार रहे हैं। भला अल्लाह ताला ने इनका जवाब दिया इन तीनों बातों का। देखिए पहली बात भी वो उसने जो कही, तो जाहिर है एक दुनिया के अंदर उसने अल्लाह के हक में कमी की थी और हंसता रहा, हंसी मजाक उड़ाता था इनको, यानी हंसी मजाक इसी चीज का उड़ाया जाता है ना जिसको कुछ आप समझते नहीं है, जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, जिसकी कदर नहीं होती, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसका ही मजाक उड़ाते हैं ना। तो दीन हमारे लिए इतना ही इनवैल्यूएबल है कि आज उसकी मजाक हो रहे, या फिर वो अल्लाह मुझे हिदायत दे देता, ये तो झूठ बात है अल्लाह ने तो हिदायत दी थी, या अल्लाह मुझे वापस जाने दे एक दफा, तो अल्लाह ताला फरमा ले भला कद जाअत का आयाती, क्यों नहीं आई थी, अब जो ये तुम कह रहे हो आई थी। अच्छा अभी ये देखे ना एक बात कि ये अल्लाह ताला वहां पे जो उसको जवाब देना है या जो उसकी हसरत है उनका जवाब हमें कुरान में दे के हमें शऊर दिलाया जा रहा है कि होश करो, ये है जवाब कि आई थी, यानी इस वक्त तुम्हारे पास आई हुई है ना, जो वहां जाके तुमने कहना है तो आज हमें मिली हुई है ना, ये आयात कद जाअत का आयाती फकज्जबता बिहा, तुमने क्या किया, तुम्हारा रवैया क्या था, आज तो तुम कह रहे हो अगर अल्लाह हिदायत देता हम भी हो जाते इस तरह मुत्तकी, तो तुम्हारे पास तो आई थी आयतें, तुम्हें किसने रोका था, तुमने झुटला दिया उनको, बस तकबर था और तुमने तकबर किया। तकबर क्या होता है, वतरुल हक व तकामतुन नास, बतरुल हक यानी हक वाजे हो गया, हक सामने आ गया, उसके बाद उसको रिजेक्ट करते मैं नहीं मानता, मुझे मुझे नहीं इस चीज की परवाह, मुझे नहीं ये समझ आती, मेरे माइंड में तो ये पड़ती ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में हजार क्वेश्चन है, ये क्या बात हुई, जब इंसान कहता ना ये क्या बात हुई, तो ये तकबर नहीं तो और क्या है, अपने आप को बड़ा समझते हो, इतना बड़ा समझते हो कि अल्लाह की बात को कह रहे हो, ये क्या बात हुई। अरे इस तरह के क्वेश्चन जिनके होते हैं वो समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहते, उनको इसके अंदर फ्लॉ नजर आ रहा होता है। एक समझने वाली नेचर अलग होती है और एक सरकशी वाली अलग होती है, इंसान के अंदर तकबर इतना है कि वो अपनी अकल को इतना बड़ा समझता है, तो तुमने आगे से तकबर किया, मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते, ये हमारे रिवाजों के खिलाफ है, ये हमारे खानदान की रिवायात के खिलाफ है, ये तो आज के नॉर्म्स के खिलाफ है, हम नहीं इसको मानते, ये तकबर ही तो है। और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर हुआ वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। जब आयते आए सामने, जब आप ससलम के फरामीन आए, झुक जाओ, आजी करो, कहां तुम और कहां अल्लाह की बात, और आगे से ये कह देना हम नहीं इसको मानते, हम नहीं इसको सही समझते, ये क्या बात हुई, ये कैसे आज हो सकता है, ये कहां से ले आए, ये तकब्बुर है। वकुंता मिनल काफिरीन, और तू था काफरों में से, तू इनकार करने वालों में से था, ये तेरा हाल था। वहां पे किसी के एक्सक्यूज को सुना नहीं जाएगा कि हाँ जी इन्होंने जेन्युइन एक्सक्यूज दिया है, वाकई बेचारे अगर इनको भी हिदायत मिले, नहीं तुम्हारे पास आई तो थी हिदायत, क्या आई नहीं हुई आज, हम में से कौन है उस दिन जो कह सकेगा कि हमारे पास हिदायत का पैगाम नहीं आया था, कोई भी नहीं। वह यौम अल कयामती तरल्लदीन कतबुल्लाह वुजूहुम मुस्वद्दा, उस दिन कयामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे जो अल्लाह के ऊपर झूठ बोलते थे, उनके चेहरे स्याह होंगे। ये भी अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना है ना, कि ऐसा तो कोई अल्लाह का हुक्म ही नहीं है ये, अल्लाह हालांकि अल्लाह ताला ने वो हुक्म दिया हुआ है, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना है। अल्लाह ताला को ये बात पर तो पसंद ही नहीं, या अल्लाह ताला को तो ये बात पसंद है, जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था अल्लाह पे झूठ बांधने में क्या क्या चीजें आती हैं। खुद ही से हदीसे घड़ लेना भी अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी अल्लाह की बात है। खुद हदीसे घड़ लेना, खुद ही तफसीरें अपनी मर्जी से करते जाना, जो अपने मसलक के मुताबिक है उन उस तरह से तफसीरें करते जाना, हदीस में जो तफसीर बताई गई है वो छोड़ देना। तो उनके चेहरे उस दिन स्याह होंगे, आपको पता है क्यामत के दिन चेहरे स्याह भी होंगे और रोशन भी होंगे, लेकिन इनके चेहरे स्याह होंगे। अलई सफी जहन्नम मसवल लिल मुतकब्बिरीन, क्या जहन्नम ठिकाना नहीं है जहन्नम तकब्बुर करने वालों के लिए? ये तकब्बुर ही है कि जब अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा जाए, ये भी एक तकब्बुर है कि तुम इतनी बड़ी अपने आप को चीज समझते हो कि अल्लाह के ऊपर बातें बनाने शुरू कर। और यही आयत इसी तरह, ये एंड का हिस्सा, ये हम शुरू में इस पारे के पढ़ चुके हैं सेम यही अल्फाज के साथ। अल्लाह ताला हमारे उस दिन की हसरतों से महफूज रखे, उस दिन पछतावों से महफूज रखे। अल्लाह ताला इसी दुनिया में हमें होश करने की तौफीक दे और गफलतों से निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हमें सबको सिराते मुस्तकीम पे चलाए, हिदायत हमें अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبدأ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا